أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 202، آیت نمبر 41 سے 60، سورة روم، اور سورة کا یہ آخری سبق ہے. لیسن نمبر 202، آیت نمبر 41-60، سورة الروم. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 41 سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا بر اور بحر میں ان کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید کہ وہ باز آ جائیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے زمین کے اوپر لوگوں کے برے کاموں کے جو اثرات ہیں اس کو پیش کیا. سورۃ روم کے آغاز میں ہم نے روم اور فارس کی جنگ کا تذکرہ دیکھا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بنیادی اصول دے دیا، اور وہ کیا کہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ کائنات بہت پرسکون تھی. یہاں بہت اصلاح تھی، ہر چیز اللہ کے آگے مسلم ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کے آگے جھکنا چاہتی ہے. لیکن بعض لوگوں کے برے عمل جو ہیں وہ اس کو گندا کر دیتے ہیں. تو زہرہ کا لفظ استعمال کیا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کھلم کھلا بات ہے کہ ظاہر ہو گیا الفساد. فساد کیا ہے؟ پیچھے بات بہت دفعہ ہوئی، اصلاح کی ضد ہے. فساد دو طرح کا ہوتا ہے، حسی فساد، یعنی جس کو آپ محسوس کر سکیں. مثلا اس کمرے میں بینچز بکھر جائیں، گندگی پھیل جائے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ فساد جس کو دیکھا جا سکے، گندگی، خرابی، ٹیڑھ پن، اس کو ظاہری فساد کہتے ہیں. دوسرا فساد ہوتا ہے اخلاقی فساد، یا حسی کے بعد باطنی، مانوی فساد. یہ وہ بگاڑ ہوتا ہے جس کو ہاتھ سے چھو نہیں سکتے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. مثلا بد زبان ہو جانا، اولادوں کا بڑی بدتمیزی سے بات کرنا، مالکوں کا اپنے نوکروں کے اوپر چیخنا چلانا، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. پھر فساد سے مراد یہاں قحط، وبائیں، بیماریاں، آگ لگنا، پانی میں ڈوبنا، چیزوں سے برکت کا مٹ جانا، نفع مند چیزوں کا کم ہو جانا، خراب چیزوں کا زیادہ ہو جانا، ان سب کا تذکرہ کیا کہ اس وقت اگر زمین کو دیکھے، نہ صرف یہ کہ خشکی بلکہ فی البر والبحری، انسانی آبادیوں میں بھی اور سمندروں میں، سمندروں میں انسانوں کا آنا جانا، سمندری جانوروں، ہر طرف فساد ہی فساد ہے. سچ آج دکھ رہا، دنیا میں جو حالات ہو گئے، جو ویپنز بنے، جو اس کا پولیوشن پھیلا، اس کے اثرات آج دنیا میں دکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امن کے لیے بنایا، اور امن اور سکون کب قائم رہتا ہے؟ جب ہر شخص اپنا کام اچھی طرح کرے. ہم اس صرف چھوٹے اس کلاس روم کو ہی دیکھ لیں کہ یہاں نظام کب چلے گا، جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کرے گا، رولز اور ریگولیشن کو فالو کرے گا، جہاں ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں، جہاں آزادی کے ساتھ ہر بندہ اپنی رائے دے سکے، اپنے فرائض کو صحیح رکھے. جب یہ نہیں ہوتا تو فساد پھیلتا ہے، جب لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے دوسروں کے حق بھی لینا چاہتے ہیں، ایسی دنیا میں پھر چین نہیں آتا. دنیا میں اللہ نے اپنی ذات کو چھپا کر ایک ایسی چیز ہمارے لیے کھول دی کہ بن دیکھے اللہ کو مانو اور اس کے حکموں پہ چلتے جاؤ. جب انسان یہ کام کرتا ہے، دنیا میں امن ہے اور چین ہے. جتنا لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اتنا لوگ اصلاح سے دور ہو کر فساد کے قریب آتے ہیں. تو سب سے بڑا فساد جو بر و بحر میں پھیلتا ہے نا، وہ کفر کا ہے. ترتیب سے لکھ لیجئے، سب سے بڑا فساد، ڈس آرڈر، ڈس آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے سے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہی کوئی نہیں بنانے والا، یہ خود ہی بن گیا، چرخی گھومی اور گھومتی گئی، पहाड़ बन गए, दरिया बन गए, दिस एंड दैट, ये सब कुछ हो गया। फिर दूसरे दर्जे पे अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाना, ये पानी समंदर का फलां बुजुर्ग की वजह से रुका हुआ है, ये हमारे देवी देवताओं की वजह से ये काम हो रहा है, इस तरह से शिर्क को जब ले आते हैं। तीसरा फसाद जो दुनिया में आया बहुत दफ़ा, वो था अंबिया कराम की तकजीब की वजह से। इसकी दलील हर पिछली वो कौम जो अल्लाह के अजाबों से हलाक हुई, कौम नूह के दौर में जो फसाद फैला था तूफ़ान नूह की सूरत में, वो हज़रत नूह की नाफरमानी की वजह से था, और इसकी बाकी सारी मिसालें भी अंबिया की ज़िंदगी में मिलती हैं। फिर एक फसाद फैलता है जब लोग कबायर के रसिया हो जाएं, कबीरा गुनाह इतने आम हो जाएं कि वो ऐसे लगे कि अब उसके बग़ैर तो गुजारा ही नहीं। आज के दौर में ही देख लें, पिछले सबक में सूद की बात हुई, सूद जिसको अकबरुल कबायर कहा गया, आज लोग उसको यूं निकल जाते हैं जैसे च्युइंगम निकल जाएं। तो फसाद फैल गया ना, कबायर का मुर्तकिब। ज़िना को देख लें, हदीस में कबीरा गुनाह कहा गया, लेकिन आज इतना आम होता जा रहा है कि मुझे तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के माँ बाप भी कबूल कर ही लेंगे कि फिर अब बच्चे एक तोत के साथ तो पहले रह ही लेते हैं शादी से पहले, ये कौन सी बड़ी बात है, इट्स ओके okay। फिर इस जवानी में तो सारे ये करते ही हैं। फिर इसके बाद जो फसाद होता है ना, वो आम गुनाहों का मुसलसल करना, यानी सगीरा गुनाह आप कहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। याद रखिए कि सगीरा गुनाह को मुसलसल करना उसको कबीरा बना देता है, यानी गुनाह को गुनाह ही ना समझना। फिर फसाद के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं कि जब अल्लाह की चुनी हुई कौमें ऐश और आराम की दिलदादा हो जाएं, जो कौमें अल्लाह की तरफ से चुनी जाती हैं, नबी आके उनको दावत देते हैं, उनका काम क्या होता है कि दुनिया में अल्लाह की नुमाइंदा बन करें, लेकिन जब वहाँ ऐश और आराम में आते हैं, जब वो दुनिया को उसी तरह देखने लगते हैं जैसे कुफार देखते हैं, तो ज़ाहर हो जाता है फसाद। जब लोग अल्लाह की हदों को पामाल करें, इखलाकी जाब्तों को तोड़ें, कत्ल व गारत गरी हो जाए, दूसरों के हक मारे जाएं, इन सारी सूरतों में ज़मीन पर फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई पकड़ आती है। देखिए कि कायनात की हर मखलूक जो है ना, ये अल्लाह के ताबे है, सूरज चांद सितारे पहाड़ बादल हवा। इंसानों के किसी गिरोह में जब बिगाड़ आता है ना, हदों से आगे गुजरते हैं, तो अल्लाह ताला बस किसी एक अपनी नेमत को कहते हैं कि अब तुम भी सरकश हो जाओ। मसलन कौम नूह पे अल्लाह ने पानी को कहा तुम सरकश हो जाओ, फतगा सरकश हो गया पानी, किसी पे हवाओं को सरकश कर दिया, किसी पे जलजला आ गया। इस तरीके से दुनिया में ये मामलात बिगड़ते हैं कि आज अगर आप अमली तौर पर देखें तो पूरी दुनिया जो है एक आतिशकदा बन चुकी है। कल के दौर तो कल के थे, आज की देख लीजिए, खुदा फरामोशी कसरत से दिखेगी। अल्लाह के दिए हुए निज़ाम हयात को लोग अपने लिए मुश्किल समझते हैं, कोई गोशा आफियत आज भी आपको दुनिया में कम ही दिखेगा। जगह जगह मिसाइल बॉम्ब्स, आपने सुना होगा कि जो जापान में जलजला आया है, उससे तो जो तबाही हुई सो हुई, लेकिन उससे बड़ी तबाही उनके अपने ही एटमी प्लांट के अंदर कुछ धमाकों की वजह से हो रही है। मैंने सुना है, खुद तो बराह रास्त नहीं पढ़ा, क्या अब उसकी रेडिएशन के असरात खुद उनके अंदर आएंगे ना। आज जितने हथियार बन रहे हैं उतनी पोल्यूशन फैल रही है। एक एक्सपोजर कुछ महीने पहले हुआ था जिसकी वजह से कहते हैं कि सर्दी गर्मी का मौसम ही बदल गया। पिछले चंद महीने पहले जो एक फटा था कुछ इधर ग्लेशियर के पास कुछ, कितना अरसा उसकी वजह से हवा में धुएं करे, शायद 8-10 दिन तक तो फ्लाइट्स ही कैंसिल रही। ये क्या है फसाद। आज नाइट्रोजन बम है तो हाइड्रोजन बम है तो कुछ है तो कुछ है, ऐसे लगता है कि हर जगह अल्लाह के हुक्मों को पामाल करने की सजा है। आज बच्चों का घरों से भागना क्या है, क्या ये ज़हर अल फसाद नहीं है? आज माँ बाप बच्चों के हाथों से मजबूर दिखते हैं, क्या ये फसाद नहीं है? आज इत्तेफाक से एक खातून के साथ सफ़र के दौरान बात हुई, तकरीबन 70 के करीब होंगी, तो इंग्लिश चूँकि उनको आती थी तो मैंने उनसे बात करनी मुनासिब समझी। फिर मैंने ऐसी बात में पूछा उनसे, मैंने कहा कि आप फैमिली के साथ रहती? कहती नो आई लिव अलोन, मैं अकेली रहती हूँ, बट आई हैव बॉयफ्रेंड एंड ही विल कम इन द वीकेंड्स। कहती कि नहीं मैं हूँ अकेली नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है और वो वीकेंड पे आता है मेरे पास। 70 साल के करीब थी वो औरत, बूढ़ी थी। मैंने कहा सैड, मैंने कहा देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त होगा, फैमिली के साथ रहने में बहुत काम होते हैं, अकेला रहना ईजी है। कहती येस ऑफ कोर्स। फिर मैंने उसे कहा डू यू नो कि इस्लाम में बच्चों को इस्लाम क्या सिखाता है कि जब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो आप बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहे, तो बहुत उसको लगा है, ओ इंटरेस्टिंग। मैं कहा यू आर वर्किंग? कहती हाँ। कहती आई वर्क डे नाइट ऑल द टाइम, वर्क वर्क वर्क, इसीलिए आज मैं इस वक्त आई हूँ, रात को लेट आई, दिस एंड दैट ना। तो वैसे कहती बट स्टिल आई हैव किड्स, कहती मेरे बच्चे हैं, दो बेटियाँ एक बेटा है, और आई एम अ ग्रैंड मदर टू, यानी शादी नहीं है बाकी सब कुछ है, और पास कोई भी नहीं है, कोई किधर है कोई किधर है, और ये अकेली औरत कमा रही है और खा रही है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस्लामिक फैमिली सेटअप बताया कि हमारे यहाँ तो इस उम्र में या वो पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो मदर्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि इस बच्चे की पसंद का खाना पकाएं, इसका पकाएं, और वो साथ रहते हैं खाते हैं। तो मैंने कहा इस उम्र में डू यू नो कि वी डोंट नीड द मनी, वी डोंट नीड द लग्जरियस थिंग? कहती यस ऑफ कोर्स। मैं कहा इंसान को लोग चाहिए होते हैं ना। मैंने उसे कोई और बात नहीं की, सिर्फ फैमिली सेटअप से, क्योंकि इस उम्र में लोग बेचारे तन्हाई के मारे हुए होते हैं तो उनको नहीं समझ आती। मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाया करो, लेकिन आप देखिए कि हसरत दिखती है आपको, क्या ये फसाद नहीं है कि एक औरत चार किस्म के बच्चे लेके फिर रही है और उसके साथ एक भी मर्द नहीं है? क्या ये फसाद नहीं है कि 20 साल की उम्र तक पहुंचने में एक लड़की चार पार्टनर बदल चुकी है? ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, हमारी तो नहीं है। क्या ये फसाद नहीं है कि अमेरिका में पैदा होने लगा गालिबन हर दूसरा या तीसरा बच्चा इलीगल है? क्या ये फसाद नहीं है कि बाप का नाम तक फॉर्म्स में से अब निकलवा दिया गया कि माओ को एम्बेरसमेंट होती है कि किसका लिखा है हमें तो खुद नहीं पता? क्या ये फसाद नहीं है? रिश्तों का टूटना, खानदानों का टूटना, माल का फसाद, आज आप देखिए हर चीज़ में फसाद है। इकोनॉमी का फ्लॉप, आप देखिए कि मुल्कों की मईशत तबाह, मुआशरत तबाह, रिवायात तबाह, हालात तबाह, हर तरफ औरतें मर्द, मर्द औरतें बन गए, बच्चे जो है वो माँ बाप बन रहे हैं, माँ बाप बच्चे बन गए उनके आगे। हाकिम और महकूमियत की कैफियत है, ऐसे लगता है कि इस आयत को पढ़ के जैसे आग लगी हुई है हर तरफ, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी। फिर आप लोगों को जब कभी समंदरों में जाके गुनाह करते देखते हैं तो ये आयत बड़ी याद आती है। मैंने एक ऐसा सफ़र किया था कि शिप में नाइट बसर हुई थी, तो जो कुछ वहाँ लोगों के लिए सामान या आसाइश और ख़राबियों के मामले थे, तो मुझे ये आयत पूरी रात ही याद आती रही कि अल्लाह हमें न डुबोना, क्योंकि तूने खुद कह के लिए युज़ीक़म बादल्लज़ी आमिलू, कि अल्लाह फिर यूं चखाता है अजाब, लोग और मस्त हो जाते हैं, पानियों के पास जाते हैं लोग और मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं। क्या ये फसाद नहीं है? लोगों ने ज़मीन पे तो जो करना था, अब जहाज़ों के अंदर ऐसे अरेंजमेंट्स और ऐसे जहाज़ बन रहे हैं कि जहाँ पूरे डिस्कोज और पूरे नाइट क्लब्स के इंतज़ाम होंगे, लोगों को ऐसी तस्वीरें भेजते रहते हैं कि आओ और अपनी तुम तईशात का इंतज़ाम करो, 1,000 की टिकट 5,000 की और वो ओवर बुकड है। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, तईशात तो चाहिए। जब कभी जहाज़ में बैठ के मैं ये आयत को सोचूँ तो मुझे फिर खौफ आता है कि अल्लाह यहाँ बैठ के जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हरकतें हैं, क्या ये सारा कुछ ज़मीन और आसमान में फसाद नहीं है? आप देखिए कि आप इमेजिन करें कि कोई शख्स आपके घर में आए, आपने घर बड़ा साफ़ सुथरा किया हुआ, सजाया हुआ, सफ़ेद चादरें बिछाई हुई हैं, खूबसूरत कर्टन्स हैं, ऑफ वाइट कलर का फर्नीचर है, और आप कुछ मेहमानों को बुलाएं और जाने तक वो आपके सारे घर को, जिसको कहते हैं ना कि तहोबाला कर जाएं, उनके बच्चे आपके कुशंस के ऊपर नाचें कूदें, खाना डाल दें, गिरा दें, क्या आप सोचेंगे? आपका दिल चाहेगा ना कि मैं इनको कभी ना बुलाती। हम इंसान भी ज़मीन पे यही कर रहे हैं। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ज़मीन को सफ़ेद मैदे की रोटी की तरह लाया जाएगा, जिस पे कोई खून नहीं बहा होगा, जिस पे कोई गुनाह नहीं होगा, और फिर अल्लाह उसको आग में डाल देगा, उन लोगों को दिखाने के लिए कि जो अब दो दुनिया बने हुए थे, इस दुनिया के पीछे भागते थे, जो आज खुद आग में चली गई। ये ज़मीन पे जो जलजले तूफान सैलाब, ये इंसानों के गुनाह हैं। जहाँ ज़िंदगी में आपको कोई गम दिखे, देखिए आजमाइश तो होती है, लेकिन अमूमन जो हालात हमारे साथ इनफरादी तौर पे और इज्तमाई तौर पे होते हैं, दोनों में हमारा गुनाह होता है। बीमा कसबत, जो लोगों ने कमाया, आप देखिए यहाँ लफ्ज़ आई दिन नास आया है कि लोगों के हाथों ने कमाया। क्यों? गुनाह तो सारे जिस्म करता है, हवास से करता है इंसान, हाथों का जिक्र क्यों है? इसलिए कि हाथ इंसान के अमल पर दलील है, ये पेश रो होते हैं, ये नुमाइंदा होते हैं। हमारे औरतों में कहते हैं ना, फलां रंगे हाथों पकड़ा गया। अब हाथ रंगे हुए तो नहीं होते, लेकिन हाथ सबसे पहले होते हैं, इंसान की पूरी तकदीर इन हाथों से बनती और बिगड़ती है। फिर आप यहाँ नोट कीजिए, बाज़ अल्लज़ी, थोड़े से काम, सारे गुनाह नहीं, थोड़े कामों की सज़ा मिलती है दुनिया में। क्यों भाई? इसलिए कि सारा नतीजा तो क़यामत के दिन सामने आएगा। इस दुनिया में सारा दे दे अल्लाह तो होगा क्या कि ज़मीन पर एक चलने वाला ना बचे। 12वें पारे के शुरू में आप पढ़ चुके हैं, वलो याखिज़ुहुमुल्लाहु बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ ले कोई बंदा ना बचे। इसी तरह सूरत शुरा की गालिबन आयत है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो मुश्किल आती है ये तुम्हारे हाथों का किया धर है, और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देता है। हर गुनाह पे पकड़ ले तो बंदा तो दुनिया में जी ना सके। तो लिहाजा अगर कोई खराबी हो तो उसका जिम्मेदार बंदा खुद को समझे। सारे नतीजे आगे दिखेंगे, थोड़े थोड़े ही हम बर्दाश्त नहीं हो रहे, जो अमल थे वैसे हो गए। क्यों आती हैं ये मुश्किलात? लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के पलट आए, शायद अल्लाह की तरफ लौट आए, तौबा कर लें, अपने इस गुनाह की शिद्दत को जानें। अल्लाह ने जो निज़ाम कायम किया था उसमें खलल डाल दिया। जहाज़ में आप बैठते हैं तो वो कहते हैं जी अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑफ कर दें, वरना जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम में खलल आएगा। फौरन बंद कर देते हैं, कोई नहीं रोकता, क्योंकि किसी को भी भटकना नहीं है कि जा रहे थे पाकिस्तान और पहुंच गए ईरान। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम मेरे कायनात के इस नेविगेशन सिस्टम में खलल डालते हो तो तुम्हें नहीं पता चलता, मैं तो अर्रहीम हूँ, मैं तो अर्रहमान हूँ, मैं तो अलवदूद हूँ, तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं अलकहार और अलजब्बार बनूँ, मैं तुम्हारी पकड़ करूँ। जब इंसान एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है फसाद होता है, और आज जो ज़ाहरी हिस्सी फसाद है उसको तो एक तरफ कर दे, जो जहनी फसाद है अल्लाह की बना। जब लोग हमारे मुल्कों में जाते हैं तो कहते हैं जी यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, बड़ा फसाद है, यहाँ झगड़े हो रहे हैं, यहाँ गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ गटर बह रहे हैं, यहाँ मक्खियाँ हैं, यहाँ कूड़े का ढेर है। जब पढ़े लिखे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में आते हैं तो वहाँ का जहनी बिगाड़ नहीं दिखता, वहाँ की गलियों में बहती हुई गंदगी और बेहयाई और उरियानी नहीं दिखती। तो सोच की बात है, ज़ाहरी फसाद से गंदगी फैलती है, गंदगी होगी मक्खियाँ आएंगी, लेकिन जहनी बिगाड़ से उससे ज़्यादा ख़राबी होती है। वो लोग जो अपने बच्चों को अनअटेंडेडली पालते हैं ना ऐसे माहौल में जहाँ चारों तरफ करप्शन हो, फिर वो इसका नतीजा भुगतते आने वाली नस्लों तक, कई दो तीन नस्लें तो बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। अल्लाह ताला लोगों को वसाइल देते हैं, लेकिन जब लोग वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं तो गोया कि वो फसाद की तरफ जाते हैं, और ये चीज़ इंसान के लिए हकीकत में बहुत ही ज़्यादा अपने लिए दूसरों के लिए भी नुकसान का सबब है। एक और बात इस आयत से पता चलती है, और वो क्या कि लोगों के ज़ाती गुनाहों की वजह से दूसरी मखलूक को भी तकलीफ़ होती है। चंद अकवाल आपके सामने रखती हूँ। बस मुफसरीन कहते हैं कि जो इंसान कोई गुनाह करता है वो सारी दुनिया के इंसानों, चौपायों और चरिंद और परिंद पर जुल्म करता है, क्योंकि इसके गुनाहों के वबाल से जो बारिश का कहत और दूसरे मसाइब दुनिया में आते हैं इससे सभी जानदार मुतासिर होते हैं। इसलिए क़यामत के रोज़ ये सब भी गुनाहगार इंसान के ख़िलाफ़ दावा दायर करेंगे। एक और किसी का कौल है कि जो शख्स हराम माल खाता है वो सिर्फ़ इस पर जुल्म नहीं करता जिससे ये माल नाजायज़ तौर पर हासिल किया, बल्कि पूरे इंसानों पर जुल्म करता है। क्यों? अव्वल तो एक के जुल्म से दूसरे लोगों में जुल्म करने की रस्म पड़ती है, और ये सिलसिला सारी इंसानियत को मुहित हो जाता है। दूसरे इसके जुल्म की वजह से दुनिया में आफतें और मुसीबतें आ जाती हैं। अब एक वही छोटा सा सवाल है कि फिर नबियों पे जो मुश्किलात आईं, तकलीफ़ें आईं, आजमाइशें आईं, या आज अगर एक नेक मोमिन के ऊपर आजमाइश आती है तो फिर उसका क्या ताल्लुक है, क्या वो गुनाह है कि नहीं? सवाल इस तरह से बना लें कि किसी बंदे पे कोई मुश्किल आई, कैसे पता चले कि ये गुनाहों की सज़ा है या आजमाइश है? बस इसका एक क्राइटीरियन याद रखें आज हम अपने लिए, किसी मुसीबत के आने के बाद अगर रजू इल्लाह हो गया, लअल्लहुम यरजिऊन, तौबा कर ली, गुनाह छोड़ दिए, नेकियों की तरफ आ गए, कुरान की तरफ लग गए, अपनी बुराइयां छोड़ दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए नेमत थी, आजमाइश थी आप पे। और इसका बरक्स, अगर किसी तकलीफ़ के आने के बाद और दुनिया की तरफ पलट गए और किसी गलत चीज़ पे चले गए, तो समझ लें कि ये आपके पहले गुनाहों की सज़ा थी जिसने आपको दूसरे कुछ और गुनाहों में डाल दिया। नबियों को अल्लाह ताला आजमाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दीन में पक्के होते हैं। अल्लाह ताला उनको मुश्किलात में डालकर कुछ और मैल कुचैल पाक करके आखरत के दर्जे देना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अशद्द अन्नास बलाल अम्बिया, सबसे ज़्यादा शदीद मुश्किलात आजमाइशें नबियों पर आईं, फिर सुम्मल अमसल, फिर उनके मिसल यानी जिसका ईमान नबियों जितना होगा या उनके करीब होगा, फमसल फमसल यानी इससे करीब तरीन। तो लिहाजा हर बंदा खुद पे जानता है। एक आखिरी बात कर देती हूँ कि एक और मियार रख लें। आप पे कोई मुश्किल आए, बीमारी, गला ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सर में दर्द है, कोई भी ऐसी कैफियत जिससे हम इंसान होने के नाते दो चार होते हैं, जब आप पर कोई खुद आए तो आप समझे कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है, और किसी दूसरे को किसी मुश्किल में देखें तो समझें कि अल्लाह ताला इसके दर्जे बुलंद कर रहे हैं। बस ये ज़हन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह अपने लिए हमेशा इस्लाह की कोशिश करेंगे और दूसरों को हमेशा रुख्सतें देंगे। जितना आप इस सोच को सामने रखेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही आगे ले जाएगा। इस पे एक पूरा लेक्चर भी है कि हम पे मुसीबतें क्यों आती हैं, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें डिफरेंट एंगल से इसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया। अभी हम आगे चलेंगे। फरमाया कि जाओ देखो, कुल सीरु फिल अर्दी, जाओ फिर सैर करो ज़मीन में, ढूंढो फिरो, तारीख़ को पढ़ो, तारीख़ का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कर दिया। सीरु अमर है, ये हुक्म का सीगा है। सैर करो, जाओ देखो, दुनिया में लोगों को देखो कि किसके साथ क्या हुआ, किस तरह से ये मामला हुए। फ़नज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फिर देखो कैसा अंजाम हुआ जो इनसे पहले लोग थे। जो भी तबाहशुदा बस्तियां हैं, जो भी पैरामिड्स हैं, जो भी आसारे कदीम हैं, वहाँ तुम्हें एक चीज़ कसरत से मिलेगी, और वो क्या? कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, इनमें से अक्सर मुशरिक थे। कितनी सच्चाई है। यानी जिन कौमों पे भी अजाब आए ना अल्लाह ताला के, वो सब कौन से होते हैं? मुशरिक होते हैं। इसीलिए आज अगर आप आसारे कदीमा में देखें तो शिर्क के मज़ाहिर दिखेंगे। आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान के म्यूजियम्स देखें, कसरत से क्या मिलेगा? बहुत। आप इजिप्ट में चले जाएं, म्यूजियम्स में बहुत। आप लंदन में चले जाएं, बहुत बहुत म्यूजियम बुतों के भरे हुए हैं। लोगों ने तो यादगारें तक कायम करके रख दी। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पकड़ आती है जिस गुनाह पे सबसे ज्यादा, वो क्या है? शिर्क। अल्लाह को पसंद नहीं है। एक वो वक्त होता है कि जहाँ अल्लाह ताला दौलत इतनी दे दे, इतना माल दे, इतना कुछ दे, लेकिन उसके बाद वहाँ इतनी खराबियाँ आ जाएं कि कोई असलहे के पीछे लगा हुआ है, कहीं दौलत बढ़ा रहा है लेकिन शौहर बीवी एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे, कहीं औलाद माँ बाप के काबू में नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये सब कुछ तुम्हें अपने करीब के दौर और दूर के दौर से दिखेगा तो समझ जाओ कि लोगों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं की। उन उजड़े हुए वीरानों में जाके देखो, उन खंडरात में देखो, ये गवाहियां देंगे कि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने वाली कौमों का क्या हाल होता है। करें क्या, दिल डर जाता है ना इन आयात को पढ़ के। अब कहा कि तुम इस फसाद के माहौल से बचना चाहते हो तो फाकिम वज्हकल दीनिल क़य्यिम, बस रुख कर लो अपना उस दीन क़य्यिम की तरफ। मिन क़ब्ल अय्यातियम यौमुल्ला मरद्दलहू मिन अल्लाह, बस कर लो अपना रुख उस दीन क़य्यिम की तरफ, इससे पहले कि आ जाए वो दिन कि अल्लाह की तरफ से नहीं जिसे टलना। यौम इज़ी यस्सदाउन, और उस रोज़ से लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पैगाम है इस आयत में कि बचना चाहते हो, इबरत का निशान बनने से बचते हो तो अपनी इसलाह कर लो, दीन क़य्यिम को पकड़ लो, मजबूत दीन को पकड़ लो। ये ऐसा खूबसूरत दीन है कि जो बंदे की दुनिया भी संवार देता है और आखिरत भी। ये ऐसा खूबसूरत तरीका ज़िंदगी है जो औलाद को वाकई माँ बाप का फरमाबरदार बना देता है, बीवियों और शोहरों के ताल्लुकात को दुरुस्त कर देता है। और अगर एक इंसान इसको छोड़ के पलटेगा तो याद रखिए कि दुनिया में वो एक अपने आप को कभी भी एक अच्छा नमूना साबित नहीं करेगा। यही जो मजमून पीछे चल रहा है इसके बारे में एक रिवायत आती है सही बुखारी की, कि जब एक बदकार और फाजिर आदमी फौत हो जाता है तो बंदे ही इससे राहत महसूस नहीं करते, बल्कि शहर भी और दरख्त भी और जानवर भी आराम पाते हैं। अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों में से हों कि जब वो मरता है तो सब खुश होते हैं। एक और रिवायत सुनन तिर्मिज़ी की है, ज़मीन में अल्लाह की एक हद का कायम करना वहाँ के लोगों के लिए 40 रोज़ की बारिश से बेहतर है। 40 दिन तक बारिश बरसे तो जितनी फसल उगेगी उससे ज़्यादा खैर और बरकत किसी मुल्क में कब आती है? जब वहाँ अल्लाह का कानून नाफिज होता है। तो एक ही मज़मून चल रहा है कि کے دین کو قائم کرو، سیدھے رہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، غلط چیزوں کو چھوڑ دو، پھر دیکھنا تمہارے لیے کتنی مدد آتی ہے اللہ کی. یہ جو لفظ مردہ ہے یہ رو دال دال سے، میم را دال نہ کر دیجئے گا، رد سے، مردہ، نہیں کوئی اس کو پھیرنے والا. اور یوم اذین یصدعون، وہ دن جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، سب کوئی عربی، اجمی، رومی، حفشی، فلاں فلاں، اس بنیاد پہ نہیں الگ ہوں گے بلکہ اعمال کی بنیاد پہ ہوں گے. اس کا روٹ ہے سواد دال عین، صدا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. صدا کہتے ہیں سر درد کو، جب درد سے سر پھٹ رہا ہوتا ہے نا، اس کیفیت کو. تو یہاں مراد ہے قوم کا جدا جدا ہونا، مختلف ٹولیوں میں بٹنا، کہ جب لوگ اس طریقے سے الگ ہوں گے، ایک زانیوں کی ٹولی ہوگی، ایک غلط کام کرنے والوں کی ٹولیاں ہوں گی، ہر بندہ اپنے حساب سے الگ طریقے سے جی رہا ہوگا، کوئی کسی کی اوٹ نہیں لے گا، جو کام غلط کرتا تھا اس کی سزا اسی کو ملے گی. من کفر فعلیہ کفرہ، بس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے. اللہ اکبر. باپ کا گناہ بیٹے کے، اور بیٹے کا گناہ باپ کے اوپر نہیں آئے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ، اور جس نے اچھا عمل کیا تو یہ اس کے اپنے ہی لیے ہوگا، اس کے اپنے ہی معاملات اچھے ہوں گے. فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو یہ لوگ اپنے ہی لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. بہت پیاری بات ہے، غلط کام کرو گے خود ہی بگڑو گے، اللہ کا کیا جائے گا. نہ مانو، تمہاری اللہ کو کیا پرواہ پڑی ہے؟ تم نہیں کرو گے نیکی، اللہ کی ذات میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو تو کوئی مشکل نہیں کرے گا. ہاں نیک کرو گے کام، تو فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. اس کو پڑھتے ہی ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ کوئی بیڈ شیٹ بچھا رہا ہے، کیونکہ لفظ یمہدون جو ہے نا، مہدہ سے ہے. مہاد کہتے بچھونے کو، مہدہ درست کرنا، جسے بچے کو لٹانے کے لیے ماں بستر کو درست کرتی ہے نا، اس کی سلوٹیں دور کرتی ہے، اس کو سیدھا کرتی ہے، تیار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں، وہ اپنے جنت کے بستروں کو سجا رہے ہیں. قبر میں ان کے اوپر، ان کے نیچے بہترین قسم کے بستر ہوں گے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ایسے لوگ وہاں اپنے راستے خوبصورت کر رہے ہیں. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں لے جائے گا. بچے کے پنگوڑے کو مہد اور بستر کو میہاد کہتے ہیں. بستر بچھانے اور اسے نرم و گداز کرنے کو مہد الفراش کہتے ہیں عرب لوگ، کہ میں نے اپنا بستر بڑا خوبصورت بنا دیا. مراد کیا ہے کہ اپنی ابدی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قبر بھی ابدی تو نہیں ہے، قبر کے بعد والی جو ابدی رام گئے اس کو درست کر رہے ہیں، یعنی جنت کے بستر بنوا رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ دنیا کے نرم گدے پیسوں سے آتے ہیں، جنت کے نرم گدے عمل صالح سے آتے ہیں. آپ کئی گھنٹے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو کارپیٹ سخت لگتا ہے، آپ کو کرسیاں چبھتی ہیں، آپ کو مشکل لگتی ہے، تو آپ اس آیت کو یاد کر لیں کہ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، ہمارے وہاں بچھونے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے جنت کے گھر تیار ہو رہے ہیں. اب دیکھیے، کہیں بھی جاتے ہیں نا تو جاتے ہی بستر چاہیے ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے انسان سفر سے. بندہ مومن ساری زندگی کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں آرام کا نام ہی نہیں ہے. وہ کہیں ایک جگہ کام نہیں کر رہا تو وہ دوسری جگہ کام کر رہا ہوگا، لیکن اس کے لیے آرام کی جگہ اس کی قبر ہے. یہ جو لفظ ہے نا لحد، قبر کو کہتے ہیں نا، اسی کا اپوزٹ مہد ہے. آپ نے ایک حدیث کا خلاصہ بھی سنا ہوگا کہ مہد سے لحد تک علم سیکھو، تو ماں کی گود، بچھونا، مرتے دم تک کوشش کریں. اب آپ دیکھیے کس کا کیسا ہوگا. دنیا میں کیسے بیڈ سیٹس ہوتے ہیں، کچھ کاٹن کے ہوتے ہیں، کچھ سل کے ہوتے ہیں، کچھ کے اندر فوم لگا ہوتا ہے. جنت میں کس کا کمفورٹر کیسا ہوگا؟ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا طریقہ کار اچھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے، جتنے آسان طریقے سے کریں گے. اب دیکھیے کوئی کہیں بھی جائے نا، سب سے زیادہ لوگوں کو میں نے کیوریس دیکھا ہے بستر کے معاملے میں، کہتے نیند نہیں آتی، تکیہ کیسا ہے، موٹا ہے، ساری رات سوئی نہیں، بستر ایسا تھا. اٹھتے گھر والا پوچھتا ہے، نیند تو ٹھیک سے آ گئی آپ کو، بستر تو آپ کے لیے ٹھیک تھا. لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری قبر کا بستر کیسا ہوگا، آخرت کا گھر جیل ہے یا ایک 5-star ہوٹل ہے؟ بہت کم سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. یہاں دیکھیے کہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد جس چیز کا اضافہ کیا وہ ہے من فضلی ہی. کرو تم عمل صالح لیکن جنت ملے گی تو اس کے فضل سے ملے گی, فضل کے بغیر جنت نہیں ملے گی. بعض لوگوں نے اس کا غلط معنی نکال لیا, وہ جنت ہماری وجہ سے تھوڑی ملنی ہے, وہ تو اللہ نے جس کو دینی ہے. لیکن یہاں ایک جملہ لکھ لیں تو اصلاح ہو جائے گی, ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں پر اللہ اپنا فضل کرے گا اور پھر اس فضل کی بدولت جنت دے گا. اللہ تعالیٰ شرابی زانی گندے لوگوں پہ فضل نہیں کرے گا. یہ جو ہمارے عمل ہیں نا, پانچ نمازیں, ہمارے روزے, ہمارا قرآن, یہ سب اللہ کے فضل کو بلائیں گے. فرشتوں کو بندے پہ رحم آئے گا, اللہ کو بندے پہ پیار آئے گا کہ دیکھو کوششیں کتنی کرتا تھا. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اچھی نماز تو نہیں پڑھتا تھا, کوشش کرتا تھا پھر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا تھا, پھر بھول جاتا تھا, پھر توجہ ادھر سے ادھر چلی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں, لیکن اس کی اس کوشش نے میرے فضل کو بلا لیا. آپ ایسے امیجن کریں نا کہ فضل ایک ٹوکن ہے, وہ ٹوکن دکھائیں گے تو کھانا ملنا ہے. اب ٹوکن لینے کے لیے جو چیز چاہیے وہ تو پیچھے پیسے ہی ہیں نا, کیونکہ بعض لوگ بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ کی ذات بندے کو جنت کا ٹوکن اپنے فضل سے دے گی, لیکن اس فضل کو ریزرو کرانے کے لیے عمل صالح چاہیے. آپ کینٹین میں جاتے ہیں, آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے, ٹوکن دیکھا جاتا ہے. ٹوکن کہاں سے آیا, پیسوں کا لیا نا. آپ رائڈس پہ جاتے ہیں, وہ پہلے ہی شروع میں آپ کو اتنے ٹوکنز دے دیتے ہیں, جائیں بھائی پیسے پیچھے دیے نا. وہاں جا کے آپ پیسے دیں گے, وہ کہیں گے نہیں سوری, وی ڈونٹ ایکسیپٹ دا کیش. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بس یہ ہے فضل, اللہ فضل سے دے گا سب کو, لیکن پیچھے پیسے عمل صالح کے ہوں گے. کیونکہ کوئی بندہ ساری زندگی بھی عمل کرتا رہے نا, صرف ایک نعمت کا حق بھی نہیں دے سکتا, اس کا ایکسٹرا ریوارڈ کیا دینا. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں قیامت کے دن جب اس کے نامۂ اعمال میں رکھی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو جو نعمتیں دی تھی وہ ڈالو, اور صرف اس کی ایک نعمت وہاں پلڑے میں ڈالی جائے گی, اور وہ ساری نعمتوں کو لے کے پھر بھی پلڑے کو ہلکا کر دے گی. صرف ایک آنکھ کا حق ادا کرنے کے لیے 500 سال کی نیکیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. ایک روایت میں سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے. کہاں پھر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں. آپ سوچیں کہ ہم ڈائمنڈ کا سیٹ خریدنے گئے ہوئے ہیں اور جیب میں بس کوئی 100-200 کروڑ ہیں. ڈائمنڈ چھوڑیں, گولڈ چھوڑیں, سلور چھوڑیں, آرٹیفیشیل بھی نہیں آئے گا اتنے کا. اب منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ترس آ رہا ہے دکاندار کو, رو رہے ہیں, کر رہے ہیں. وہ کہے گا اچھا لاؤ جو ہے دے دو, باقی میں کچھ جوڑ توڑ کر لیتا ہوں, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. اللہ کی ذات بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ قیامت کے دن کرے گی. آ جاؤ ایک دفعہ میرے پاس قلب سلیم لے کر. احسن الذی عملوا کی صورت میں کوئی زندگی بھر کی کوئی ایک ایسی نیکی تمہاری قبول کر لوں گا کہ تم کرنا چاہتے تھے. بعض لوگ اسی بات کو سن کے بے عمل ہو گئے کہ کرنا کیا ہے, چھوڑو فضل ملے گا. فضل کس کو ملے گا؟ دیکھیے کہ کچھ بچے یا آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مینرز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, آپ کو خود ہی ان پہ پیار آتا ہے. اور جس کے مینرز ہی خراب ہوں, جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں, ڈھنگ نہیں, بدتمیز ہیں, بات نہیں سنتے, کیا آپ کو ان کے اوپر رحم آئے گا؟ اللہ کو کیا چوروں پہ رحم آئے گا, ڈاکوؤں پہ آئے گا, زانیوں پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اللہ اپنے فضل سے دے گا, اس لیے کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا والے ساری اپنی چیزیں جمع کر کے لے جائیں گے تو اس میں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری نصیحت اپنے صحابہ کو کی. آپ نے فرمایا کہ سددو وقاربو وابشرو, لوگوں راہ راست اختیار کرو, اللہ کا قرب چاہو اور خوش رہو. فإنه لا يدخل الجنة, دیکھو کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. احدن عمله, کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. اب یہ بات سن کے صحابہ کہاں خاموش رہتے, بولے قالوا ولا انت یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا ولا انا, ہاں میں بھی نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرتہ ورحمتہ. हाँ मगर मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़रत और रहमत में ढांप ले, फिर मैं जाऊँगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। कोशिश करते जाएँ, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह को आप पे रहम आएगा, मुझ पे रहम आएगा। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं होगी तो फिर जो दिल चाहे वो करे। अल्लाह ताला बंदे को रास्ता दिखाता है, ज़बरदस्ती उस पर चलाता नहीं है। या ला युहिब्बुल काफिरीन में कौन से काफिर हैं? जो अमल सवाले नहीं करते ईमान लाने के बाद, और जो ईमान लाने की कोशिश ही नहीं करते, जो सिर्फ ये कहे बैठे कि देखना अल्लाह ने तो बस मेरे से ऐसे खुश हो के मुझे जन्नत दे देनी है। नहीं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।